اللهم صل على رسولك الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. किसी साहब ने एक चिट भेजी है कि मुर्शद साहिब कश्फ और साहिब नजर होता है, वो मुरीद को अपनी वॉचफुल आई में रखता है, तो क्या इसके बावजूद जरूरी है कि मुरीद अपनी कल्बी कैफियत और रूहानी वारदात का जुबानी अहवाल भी मुर्शद के सामने बयान करे? रूहानियत में बहुत सी गलतफहमियां और खुशफहमियां पैदा की हैं दरअसल उन किताबों ने जो मुख्तलिफ मुरीदों ने अपने मुर्शिद के बारे में लिखी। मुरीदों ने तो अपनी अकीदत से मगलूब होकर मुर्शिद साहब के बारे में बातें बढ़ा चढ़ा के मुबालगा आराई के साथ बयान कर दी, और ऐसी तमाम किताबों में बदकिस्मती से जोर बजाय मुर्शिद की तालीमात के उनकी करामात और उनके तसर्रुफात के बारे ही में ज्यादा बयान किया गया। नतीजा ये हुआ कि हम लोग उन किताबों को पढ़ते पढ़ते ये समझ बैठे कि मुर्शिद कोई माफ़ोकुल फितरत चीज होता है, हर चीज उसके आयात इल्म में होती है, उसके जितने मुरीद हैं वो सब पर नजर रखे होता है, हर मुरीद का अहवाल उसके इल्म में होता है। ये ऐसी खुशफहमियां पैदा हो गईं, जबकि इन चीजों को देखते हुए हमने कभी ये नहीं सोचा कि हर चीज का इल्म सिर्फ रब के लिए मखसूस है। अपने हर बंदे की जरूरियात पे नजर रखना, अपने हर बंदे के हाल अहवाल से वाकिफ रहना, ये अल्लाह ही की सिफत है। गैर अल्लाह के लिए मुमकिन ही नहीं कि हर वक्त हर शख्स के बारे में वो इल्म रखता हो। तो कोई मुर्शिद किस तरह से अपने तमाम मुरीदों की हालात व अहवाल वाकियात से वाकिफ रह सकता है? बात सिर्फ इतनी है कि वो मुर्शिद जो साहिब कश्फ होते हैं, साहिब इल्म होते हैं, साहिब हाल होते हैं, वो अगर किसी शख्स पे तवज्जो करें तो रब ताला अपनी रहमत के सदके कश्फ के जरिए उनके अहवाल उन पर खोल देता। लेकिन ये याद रखिए कि वो जो अहवाल उस इंसान पर, उस साहिब इल्म पर खुलते हैं, वो भी सिर्फ उतने ही खुलते हैं जितने रब ताला चाहता है। तो जिन चीजों से ये बातें ऐसी फैली, जिन वाकयात की वजह से ऐसी तमाम चीजें किताबों में लिखी गई, होता ये है कि अगर कोई मुरीद किसी मुर्शिद का पसंदीदा है तो जब वो मुरीद अपने मुर्शिद के पास आता है तो मुर्शिद अपने उस पसंदीदगी की वजह से उधर को मुतवज्जो होता है। तो जब मुर्शिद की तवज्जो उस मुरीद की तरफ जाती है तो उसके अहवाल से वाकिफ हो जाता है। यहां फिर मैं एक बार अर्ज कर दूं कि हमेशा ऐसा नहीं होता, क्योंकि अहवाल का खुलना भी रब ताला की रहमत पर मुनसर है कि रब ताला रहमत करे, रब ताला चाहे तो अहवाल खुलेगा, वरना साहिब कश भी अंधों की तरह बैठा रह जाएगा। इसलिए एक जमाने में जब यहां गुफ्तगू चल रही थी पीर और मुरीद के ताल्लुकात के बारे में, तो मैंने एक गुजारिश की थी कि अपने मुर्शिद को हमेशा इंसान समझिए, क्योंकि वो बुनियादी तौर पर इंसान है। सिर्फ फर्क यह है कि आपके मुर्शिद साहब ने अल्लाह ताला के अहकाम की पाबंदी करके, रियाजतें करके, मुजाहदे काट के, चिल्ले काट के अपनी रूहानी कुव्वत को बढ़ा लिया है, और अल्लाह ताला ने उसकी इबादत से खुश होके आपके मुर्शिद साहब को साहिब कशफ करामात कर दिया है। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद वो है इंसानी, अगरचे आपके मुर्शिद साहब का कंट्रोल अपनी जात पर, अपने नफ्स पर, अपने जहन पर आम इंसानों से कहीं ज्यादा है, लेकिन फिर भी हैं वो इंसानी, कहीं भी उनसे गलती हो सकती है। और आपने लातादाद ऐसे किस्से पढ़े होंगे कि किसी वली अल्लाह का किसी वजह से पांव फिसल गया और उसको सजा मिल गई। इसलिए ये तवक्को रखना कि आपके मुर्शद आपके अहवाल से तमाम तर कुलियतन और हमेशा वाकिफ होती हैं, वो कुछ जरा ज्यादा है, उन्हें एक आम इंसान समझिए। अपने अहवाल, अपनी वारदातें, अपने मुशाहदात, ये सब उनसे बयान कर दीजिए, ये सब उनसे बयान कर दीजिए, ताकि वो चीजें जो उनके इल्म में नहीं हैं, वो उनके इल्म में आ जाएं और वो उस पर आपको प्रॉपरली गाइड कर सकें। एक और सवाल है कि कभी कभी ऐसे क्यों महसूस होता है जैसे माथे के बिल्कुल दरमियान से कोई इनविजिबल चीज हमें फोकस करके अपनी तरफ खींच रही है। हिंदुइज्म में, या यूं कहिए हिंदुइज्म की जो स्पिरिचुअल हिस्सा है, उसके मुताबिक हर इंसान की एक थर्ड आई होती है, तीसरी आंख, और उसकी लोकेशन हिंदू स्पिरिचुअलिज्म में भवों के दरमियानी हिस्से में बताई जाती है। इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में इसे सिक्स सेंस कह देते हैं, और साइंस के मुताबिक हर इंसान का एक मैग्नेटिक फील्ड है और हर इंसान के जिस्म से वाइब्रेशंस एमिट होती हैं, और साइंस इस बात को तस्लीम करती है कि वाइब्रेशंस की एमिशन भवों के दरमियानी हिस्से ही से होती है। इसकी बैकग्राउंड ये है कि हर इंसानी जिस्म में एक करंट मौजूद है जो ऑन एवरेज 3.5 वोल्ट का होता है। उस करंट की वजह से, उस चार्ज की वजह से इंसानी जिस्म के इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक वेव्स, जिन्हें वाइब्स कहते हैं, वो एमिट होती हैं। जब हम किसी ऐसे शख्स से मिलते हैं जिसकी वाइब्स हमारी वाइब्स से कंपेटिबल हैं, फेवरेबल हैं, तो हम उसकी जानिब खींचते हैं, हमें एक कशिश महसूस होती है, कुछ की न्यूट्रल होती हैं, कुछ की वाइब्स हमारी वाइब्स के मुताबिकत नहीं रखती, हम उस आदमी से दूर भागते हैं। यही वजह है कि आपने जिंदगी में नोटिस किया होगा कि बसा औकात ऐसा होता है कि किसी शख्स से हमारी अलग सलग भी नहीं, हमारी उस पर नजर पड़ती है तो हमारी ख्वाहिश होती कि इससे गुफ्तगू की जाए, हमें उसके अंदर एक कशिश महसूस होती है। वो ये फेवरेबल वाइब्स ही का किस्सा है सारा। इसी तरह कुछ लोगों के सिलसिले में हम दूर भागते हैं, बगैर उनसे बात किए हमें चिड़ होने लगती है, उनकी वाइब्स हमारी वाइब्स से मुताबिकत नहीं रखती, इस वजह से ये सब होता है। तो वो जो फोकस का जिक्र किया कि कोई इनविजिबल चीज हमें फोकस करके अपनी तरफ खींच रही है, वो यही वाइब्स है। जब कोई शख्स इबादत कसरत से करता है और उसके साथ साथ नेकी की राह इख्तियार करता है, तो उसके जिस्म के अंदर वो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है और वो वाइब्स जो उसके माथे से एमिट हो रही हैं वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं। तो जहां वो बैठता है अपने इर्द गिर्द के तमाम एरिया पे, वो उस तमाम एरिया को, उस तमाम एरिया में बैठने वाले को वो इन्फ्लुएंस कर लेता है, हर शख्स उसके जेरे असर आता है। तो यूं वो लोगों के ख्यालात पे असरअंदाज हो जाता है और उनको नेकी की तरफ लग जाते हैं। ये जो इबादात हम करते हैं तमाम मजाहिब में सजदे को एक बड़ी अहमियत हासिल है। तो जो लोग ज्यादा इबादत करते हैं, ज़ौक और शौक के साथ करते हैं, मोहब्बत के साथ इबादत करते हैं, उनके सजदे हमेशा तवील होते हैं, उनका रकू भी तवील है, उनके सजदे भी तवील हैं। नतीजा ये होता है कि जब हम सजदे की हालत में होते हैं तो हमारा ब्लड सर की तरफ रश कर रहा होता है। जितना ज्यादा तवील सजदा होगा उतना ज्यादा खून दिमाग की तरफ जमा हो जाएगा। तो दिमाग को जितना वाफिर खून मिलता है उतनी वाफिर ऑक्सीजन उसे मिलती है, और जितनी ज्यादा दिमाग को ऑक्सीजन मिलती है दिमाग उतना शार्प होता है। चेहरे की तरफ भी खून का रश ज्यादा होता है तो जिल्द को खून आम हालात से कहीं ज्यादा मिलता है, ह्यूमन स्किन को, और उसके अंदर उस खून की वजह से ज्यादा ऑक्सीजन जज्ब होती है, उसमें ज्यादा ताजगी आती है। खून ज्यादा मिलने से स्किन में एक अजीब सी चमक पैदा होती है। तो ये जिल्द की ताजगी और वो चमक मिलके एक अजीब तासुर पैदा करती हैं चेहरे पर। तो हम ये कहते हैं कि फलां शख्स के चेहरे पर बहुत नूर है, वो ये वजह है। इसी तरह ज्यादा इबादत करने वाले शख्स के जिस्म में पाया जाने वाला कुदरती चार्ज ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। उसके ज्यादा स्ट्रांग हो जाने की वजह से उसके जिस्म के इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उतना ही स्ट्रांग होता चला जाता है। इसलिए बहुत से लोग जो खुद रूहानी तौर पर काफी आगे गए होते हैं वो आपसे ये कह देंगे कि फलां वली अल्लाह जो था मैंने उसके सर के इर्द गिर्द या सर पर एक नीला हाला सा देखा है। ये वो ऑरा है जो हर इंसान के जिस्म के इर्द गिर्द है। लेकिन ज्यादा इबादत करने वाले और नेक ख्यालात रखने वाले लोग, नेकी की तरफ रागिब लोगों के जिस्म के अंदर ये चार्ज इतना पावरफुल हो जाता है कि उसका ऑरा कुछ लोगों को दिखाई देने लगता है। ये सब वो चीजें हैं जिनका ताल्लुक इंसान के जिस्म के अंदर पाए जाने वाले चार्ज और इबादात और नेकी के जरिए उसके अंदर इजाफा हो जाने से ये चीजें पैदा होने लगती हैं। दूसरा सवाल है कि हदीस पाक है, एहसान ये है कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया तुम उसको देख रहे हो, अगर तुम उसको नहीं देखते वो तो तुम्हें देखता ही है, गोया तुम उसको देख रहे हो, इसकी वजाहत कर दीजिए। बात यह है कि इसका ताल्लुक, इस हदीस पाक का ताल्लुक इबादात में अखलास और तवज्जो से है। हम सब ने एक चीज एक्सपीरियंस की है कि जब हम खड़े होते हैं तो दुनिया भर के ख्यालात हमारे जहन में आने लगते हैं, ऐसी ऐसी चीजें याद आने लगती हैं जो कभी याद आई ही नहीं थी पहले कभी, और ख्यालात का हजूम जिस कदर ज्यादा होगा तो जो उतनी ही कम होगी हमारी इबादत में। फिर हमारे बहुत से दुनियावी काम पड़े होते हैं, हम इबादत तो करते हैं लेकिन कोशिश ये होती है कि जल्दी से इबादत खत्म करके अपने दुनियावी काम में दोबारा से मसरूफ हो जाएं। उस वजह से तेजी से नमाज हम पढ़ते हैं। इस तमाम किस्से से बचने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नुस्खा हमें ये दे दिया कि हम अल्लाह की इबादत इस तरह से करें जैसे कि हम अल्लाह को देख रहे हैं, और अगर उस मकाम तक की तवज्जो हम नहीं ला पाते तो कम से कम ये सोच लें हमें अल्लाह इबादत करते हुए देख रहा है। इसका फायदा ये होता है कि अगर हमने ये सोच लिया कि अल्लाह हमें इबादत करते हुए देख रहा है तो जिस तरह दुनियावी मामलात में हम अगर हमारा बॉस हमें देख रहा है तो काम बड़ी तवज्जो से करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। अगर हम ये समझें कि रब हमें देख रहा है तो हमारी नमाज की अदायगी के अंदर तवज्जो और खूबसूरती पैदा हो जाएगी। खूबसूरती मैं इन मायनों में कह रहा हूं, जब हम जल्दी में नमाज पढ़ते हैं तो वो एक तरह से उठक बैठक दिखाई देती है, जबकि तवज्जो और शौक और ज़ौक के साथ पढ़ी गई नमाज में वो कैफियत नहीं होती, बल्कि हमारा हर पोस्चर ज्योमेट्रिकली बड़ा दुरुस्त होता है। हम जब खड़े होते हैं तो हमारे पांव का दरमियानी फासला 4 इंच से कम नहीं रहता और 1 बालिश से ज्यादा नहीं होता। हाथ हमारे दोनों साइड के साथ जुड़े हुए और सामने बंधे हुए होते हैं। नजर हमारी जहां सजदा हम करते हैं उस नुक्ते पर मरकूज होती है और बेहिसो हरकत खड़े होते हैं। जब हम रुकू में जाते हैं तो हमारे घुटने लॉक पोजीशन में होते हैं, बेंड नहीं लिए हुए होते, कमर हमारी बिल्कुल सीधी और गर्दन और सर की इन लाइन होती है। दूसरे लफ्जों में यूं कहिए कि हम उल्टे एल की शक्ल बने हुए होते हैं। अंग्रेजी का अल्फाबेट एल, उसके अगर उल्टा खड़ा कर दिया जाए तो हमारा पोस्चर अंग्रेजी का उल्टा एल बन जाएगा। जब हम सजदे में जाते हैं तो हमारे दोनों पंजे जमीन से टिके होते, उंगलियां बेंड होके और उनका दरमियानी फासला उतना ही होता है जितना खड़े होते हुए था। कमर कमान की तरह नहीं होती बल्कि सीधी, सजदे में भी सीधी रहती। ये तमाम पोस्चर्स खूबसूरत हैं। अल्लाह के हजूर जब हम हाजिर हों तो हमें खूब बना समरा होना चाहिए, खूब खूबसूरत दिखाई देना चाहिए। और अल्लाह के हजूर जिंदगी में तो ऐसे हम हाजिर नहीं होते, उसकी हजूरी तो नमाज के जरिए है। तो जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हमारे लिबास बेदाग होना चाहिए, साफ सुथरा, और कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे कपड़ों पर खुशबू लगी हुई हो। इसी तरह हमारी नमाज से इत्मीनान झलकना चाहिए, जल्दी का तासुर न उभरे, इत्मीनान का तासुर उभरे। जो सूरतें आयात हम तलावत करते हैं नमाज में वो भी तरतील से पढ़ी जानी चाहिए, तो हमारी नमाज इस तरह की हो जाएगी कि हमें देखने वाले को भी और खुद हमें एहसास रहेगा कि अल्लाह हमें देख रहा है, हमारी तवज्जो मरकूज होगी नमाज पर। تو یہ حدیث دراصل ہمیں اس اخلاص اور انہماک کی طرف لے جانا چاہتی ہے جو رب کو پسند ہے. اس کے حضور جب ہماری حاضری ہو تو اس حاضری کے دوران ہمارا اخلاص اور ہمارا ذوق اور شوق اس سے جھلکنا چاہیے, نہ کہ ایک فرض پورا کر دینے کا تاثر بڑھے کہ ہم نے صرف ایک فرض پورا کر دیا. اس حدیث کا مقصد یہی ہے. یہ کسی صاحب نے کمال کی چیز پوچھی, اگر مدینہ منورہ حاضری کا شرف حاصل ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور درخواست پیش کرنا ہو تو طریقہ کار بتا دیا جائے. اللہ کے یہاں حاضری کی ریکوائرمنٹ تو یہ ہے کہ وہاں محبت عشق نہیں بلکہ جنون ہو تو وہ حاضری بڑی کمال کی ہوگی. دیکھیے پیار کی ڈگریز ہیں, ایک تو تعلقات ہیں, پھر انفیچویشن ہے, اس کے بعد محبت ہے, اس سے اگلی ڈگری عشق ہے, اور پھر جنون ہے. جنون میں کچھ یاد نہیں ہوتا انسان کو, نہ کوئی طور طریقہ یاد ہوتا ہے, نہ کوئی ادب, نہ کوئی قرینہ. جنون ان تمام چیزوں سے ماورا ہے. تو رب تعالی سے پیار اس طرح سے کیا جائے کہ وہ جنون میں داخل ہو جائے, اور اس جنون میں جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو جواب ملتا ہے. رب فوراً متوجہ ہوتا ہے اپنے اس مجنون کی طرف جو اس جنون میں اس اپنے رب کو پکار رہا ہے. وہاں جس شخص نے اپنی محبت میں اپنے عشق میں رب کے ساتھ جتنا آداب و کرینہ ترک کیا اور مجنوں کی طرح پکارا اپنے رب کو, اتنا ہی وہ اس کی پکار قبول ہوئی رب کے حضور. رب عشق کے اسی مقام کو زیادہ پسند کرتا ہے. لیکن اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار مبارک ایسا ہے جو کلیتن مقام ادب ہے. وہاں فرشتے بھی مؤدب رہتے ہیں, تو وہاں جس قدر ادب اور احترام کے ساتھ حاضری دیتا ہے انسان, جس قدر عاجزی اختیار کرتا ہے, اتنا ہی مقبول ہوتا ہے. تو جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں تو انتہائی مؤدب حالت میں حاضر ہوں, ہمارا لباس بھی پاکیزہ ہو, ہمارا جسم بھی پاک ہو, ہمارے خیالات بھی پاک ہوں, اور سب سے بڑھ کر ہماری نیت بھی پاک رہے. یہ تو باطن کی بات ہے کہ نیت اور خیال بھی پاک رہے. ظاہر کی بات یہ ہے کہ ہم ادب کے انتہائی اعلی معیار کے مطابق مؤدب ہو کر جائیں اور انتہائی عاجزی اختیار کریں. درود شریف پڑھتے رہیے, یہ سنت رب بھی ہے اور سنت ملائکہ بھی. اور اگر اللہ توفیق دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور شرمندگی کا اظہار ضرور کر دیا جائے کہ ہم ویسی زندگی نہیں گزار سکے جو زندگی ہمیں گزارنی چاہیے تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی نہیں ہوئی ہماری. تو یہی شرمندگی اور عاجزی اور ادب ہمیں شاید شفاعت دلا دے. تو میں تو اسی ایک چیز کو جانتا ہوں اور امید ہے انشاءاللہ یہ اس بارگاہ میں طریقہ مقبول ہوگا. ایک سوال اور ہے کہ کبھی کبھی ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ جو منظر اس وقت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، حالانکہ وہ منظر ہم زندگی میں پہلی بار دیکھ رہے ہوتے ہیں. براہ کرم اس کی حقیقت پر روشنی ڈال دیجیے. روحانیت میں ایک ٹرم ہم نے اکثر پڑھی ہوگی، روح کی سیر. یہاں اس نشست میں بھی بارہا اس کا ذکر ہوا کہ جب نیکی اور عبادات ہم اختیار کرتے ہیں اور اس پر مسلسل عمل کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہماری روح میں بالیدگی پیدا ہوتی ہے یا وہ لطیف ہوتی ہے. جن جو ہماری روح لطیف ہوگی، روح کی پرواز بڑھتی جائے گی، اور جوں جوں روح کی پرواز بڑھے گی اس کی سیر ہوگی. جب ہم سوئے ہوتے ہیں تو ہماری روح سیر کو نکلتی ہے، چونکہ وہ ہم حالت شعور میں وہ سیر نہیں کر رہے ہوتے بلکہ روحانی سیر ہوتی ہے. تو اس کو ہمارا شعور رجسٹر نہیں کرتا، یوں وہ یاد نہیں ہوتی ہمیں، لیکن اس سے روح ہماری واقف ہوتی ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے روحانی طور پر جس جگہ کی سیر کی ہوتی ہے، جس منظر کو دیکھا ہوتا ہے، وہ بعض اوقات جسمانی طور پر ہمارے سامنے آتا ہے. میں اس کی مثال دے رہا ہوں کہ اگر کسی شخص کی روح نے سیر کی کراچی میں سمندر کے کنارے خاص کسی اسپاٹ پر، اب وہ شعور میں رجسٹر نہیں ہے آپ کے، پانچ دس سال بیس سال کے بعد آپ کو اتفاق ہوا کراچی جانے کا اور آپ سیر کے لیے سمندر کے اسی اسپاٹ پر چلے گئے. تو وہاں جب ہم جائیں گے تو ہماری روح کی یادداشت اود آئے گی اور ہمیں کچھ یوں محسوس ہوگا کہ جیسے کبھی ہم اس جگہ کو پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. یہ تو اس کی روحانی توجیہ ہے. لیکن سائنس اور نفسیات میں بھی اس پر تجربات ہوئے ہیں، اور بہت سے ایسے بچے امریکہ میں، ان پر سٹڈی ہوئی جو کچھ علاقوں میں گئے کبھی نہیں تھے، لیکن وہ ان علاقوں کے نشانات، اس کے لینڈ مارکس، اس کے احوال وہ نہایت تفصیل کے ساتھ بیان کرتے تھے. لیکن اس کو سائنس کسی چیز کا نام دے نہیں سکی، صرف اس کو یوں انہوں نے کہا کہ کسی شخص کی ذہنی قوتیں اس حد تک بیدار ہو جاتی ہیں کہ وہ ٹائم اینڈ سپیس سے بیونڈ ہو جاتا ہے، کون و مکان سے بیونڈ ہوتا ہے. تو وہ ایک ہی جگہ بیٹھا بیٹھا ذہنی طور پر دوسری جگہ کی سیر کر سکتا ہے، لیکن اس کو کیا نام دیا جائے وہ ابھی تک فیصلہ نہیں کر پائے. وہ در حقیقت روح کی سیر ہے. تو یوں یہ ہمیں محسوس ہونے لگتا ہے کہ شاید اس جگہ کو ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا، یہ واقعہ ہمارے ساتھ پہلے بھی کہیں گزر چکا ہے. وہ روح کی سیر کا ہے.